Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakshanta Vasalmi Matao Snevi Vendo Aap Sarovandu. Taittiriya Upanishad ko lekar ke प्रसंग चल रहा है। ऋषि प्रार्थना करते हुए संकेत कर रहा है कि जो वेदांत का रहस्य है या जो वेदांत तत्व है, ऐसे उस वेदांत तत्व का जिन हमारे पूर्व ऋषियों ने, पूर्व आचार्यों ने पद वाक्य के रहस्य को बतलाते हुए और प्रमाण पुरस्सर जिसका निरूपण किया है, जिसकी चर्चा की है, ऐसे उन ऋषियों को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा यहां संकेत किया। थोड़ा सा विचार ये करना है, ये वेदांत और वेदांत को लेकर के सीधा कह दिया जाता है कि तत्त्वमसी आदि महावाक्य जो है इसके विशेष प्रमाण हैं, कहा तू ही ब्रह्म है। लेकिन ये बात जब हमारे सामने आती है तो हमको ऐसा लगता नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूं। हम सुन लेते हैं और जो है इसकी चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में घटित नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर कहीं न कहीं संशय बैठा रहता। तो इसके लिए ही संकेत ये किया गया कि संसार के अंतर्गत विद्या अविद्या, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये जो दो रूप बतलाए गए वो विद्यमान हैं, और वो जो विद्यमान हैं ये दो रूप वो क्या हैं, तो इनके रूपों को यदि हम समझ लें तो इनके रूपों को समझने पर हमें पता चल जाता है कि वास्तव में मैं क्या है और वो ब्रह्म क्या है। और जब तक इसके दोनों ये रूप हमारी समझ में नहीं आते हैं, तब तक ये बात हमारे जो है निश्चय में नहीं आ पा। और इसका निश्चय ही होना, निश्चय हो जाए तो सब हो गया, यदि निश्चय नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए अन्यत्र भी शास्त्रों में चर्चा आती, संकेत किया गया कि बसवः अष्टवसवः, कितने वसु हैं तो संकेत किया आठ, और आठ वसुओं को बतलाते हुए फिर संकेत किया कि ये जो आठ वसु हैं ये क्या करते हैं, तो सबको बसाने का काम, सबको सत्ता देने का काम करने वाले कौन हैं, तो कहा ये वसु है। क्योंकि जो भी अंतरिक्ष, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, वायु, अग्नि, ये जो सब बतलाए गए, पृथ्वी आदि, इनको ही वसु शब्द से कहा गया। और ये वसु जो है वही क्या करते हैं, तो सबको बसाते, सबको बसाने वाले, ये संकेत किया गया। लेकिन एक बड़ी विलक्षण बात कही, वो विलक्षण बात क्या है, तो वेद के अंतर्गत एक मंत्र आया है, उस मंत्र में सबसे पहले यही चर्चा की, वसोह पवित्र मसी। पहला ही उसका शब्द है वसोह पवित्र मसी। जो ये आठ वसुओं के द्वारा ये सारा का सारा संसार बसा हुआ है, लेकिन वो वसु जो हैं, उन वसुओं के लिए पूछा गया तो क्या कहा गया, तो कहने लगे वसोह पवित्र मसी। तो पवित्र मसी और असी क्रिया जो है वो मध्यम पुरुष की क्रिया है, उसके साथ जब कर्ता का अध्याहार होगा तो किसका होगा, तो तुम का होगा, अन्य का अध्याहार नहीं होगा, क्योंकि असी क्रिया है। तो असी क्रिया के साथ में, असी क्रिया मध्यम पुरुष की है, इसलिए कर्ता भी मध्यम पुरुष का है। तो जब वहां पर कर्ता का अध्याहार होगा कि वसोः पवित्र मसी, वसुओं को पवित्र करने वाले हो, कहा कौन पवित्र करता है इन वसुओं को, तो वहां पर तुम शब्द का ही प्रयोग होगा। तो वहां इसका अर्थ दिया गया कि तू वसुओं को पवित्र करने वाला, और तू शब्द से हम किसको लेते हैं, का जीव को। यहां तत्त्वमसी आदि भी जो वेदांत के वाक्य हैं
वहां भी तू शब्द से किसको लिया, तुम शब्द से किसको ग्रहण करते, तो कहा जीव को। और वहां पर यह कहा गया कि तू जो है वस्मों को पवित्र करने वाला है। और क्रम से संकेत कर दिया आगे, देवरसी पृथ्वीरसी मातृ सुनो धर्मो असी, और जो है आगे संकेत कर दिया विश्वधा असी, तू ही क्या है। तो कहने लगे इस देव को पवित्र करने वाला तू है, इस वायु को पवित्र करने वाला तू है, और इसी प्रकार से सभी जो वसु अंतरिक्षादि उनके लिए संकेत कर दिया, और अंत में कह दिया कि जो है विश्वधा या असी, तू ही सारे विश्व को धारण करने वाला, ये वहां मंत्र कहा गया। अब इसको हम देखें ये हमारे जीवन में कैसे, क्या ये जो कथन है वो सत्य है, तो आप विचार करके देखो। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का निर्माण किनके द्वारा है, इस शरीर की सत्ता किसको लेकर के, पंचभूतों को लेकर के, और वो भूत आदि जो है किसको लेकर, तो माने मूल रूप से वसुओं को लेकर के, उसी को कह दिया। तो अब जो वसु जो है उन वसुओं को लेकर के ये शरीर है, लेकिन वह जो वसुओं को लेकर के शरीर है उन वसुओं को भी पवित्रता देने वाला कौन है। जब ये प्रश्न आया तो कहा गया तू, तू का मतलब जीवात्मा, यह जीवात्मा ही क्या करने वाला है, कहा वसुओं को पवित्र करने वाला है। जब तक इस शरीर के अंतर्गत जीवात्मा है तब तक शरीर कैसा पवित्र है, यह सब मानते हैं। और इस जीवात्मा के न रहने पर क्या होता, यह शरीर ही क्या हो जाता, अपवित्र हो जाता। और इतना ही नहीं, इन सारे के सारे वसुओं को या शरीर को धारण करने वाला भी कौन है, तो जीवात्मा। शरीर रूपी जो वसु जो धारण किए हुए हैं, ये वसु भी कब तक है और कब तक पवित्र है, ये तो कहने लगे जब तक जीवात्मा। और जीवात्मा यदि नहीं है तो क्या होता, तो ये वसु भी बिखर जाते हैं, वो शरीर भी फिर जो है शरीर की स्थिति में रह जाता नहीं, सड़ने लगता है, गलने लगता है, इसकी दुर्दशा होने लगती, ये शरीर भी बिखर जाता, ये संकेत किया गया। अब जो है कहा कि यह जीवात्मा ही किसको धारण किए है, तो आगे ये भी संकेत कर दिया कि देव को भी धारण किए हुए, और जो है वायु को भी धारण किए हुए। तो देव, और देव क्या है, तो देवा करके वहां संकेत किया गया, पुह माने इसके मस्तिष्क में ही सारे देव विद्यमान, अर्थात जो स्वर्ग लोक भी विद्यमान है, कहा वो भी क्या है, इसका मस्तिष्क है। जब तक मस्तिष्क की स्थिति है तब तक वहां देवत्व है, और मस्तिष्क की स्थिति न रह जाए तो देवत्व भी नहीं। इसी प्रकार से श्वास का आगमन और निर्गमन किसके बल पर होता है, तो कहा उसी जीवात्मा के बल पर, यदि जीवात्मा न हो तो श्वास का आगमन और निर्गमन भी नहीं होगा। और उस वायु को भी उष्णत्व देने वाला कौन है, जो वायु है जो प्राण वायु है उसे भी उष्णता देने वाला कौन है, तो ये जीवात्मा ही। और जीवात्मा यदि उसको उष्णता देना बंद कर दे तो क्या होता है, वायु ठंडी हो जाती है, तो बाप कहते शरीर ठंडा पड़ गया, इस सारी की सारी। तो वहां वेद के अंतर्गत कहा कि वसुहो पवित्र मसी, तुम सारे वसुओं को पवित्र करने वाले हो, और यही है अविद्या, हम इसी चीज को जान पा रहे नहीं। और इसको जानने तो आ जाती है विद्या, अब ये विद्या अविद्या इसी को लेखे प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म अधर्म आदि, अब यहां संकेत ये कर रहे हैं कि ये विद्या अविद्यात्मक धर्मों वाला जो ये जीवात्मा सारे वसुओं को पवित्र करने वाला। और भगवान ने गीता में भी अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन भी अविद्या को लेकर के ही शोक से ग्रसित हुआ, तो भगवान ने जब फटकार लगाई तो क्या कहा, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, क्या कहा? त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, माने तू अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग कर। और दुर्बलता क्या है? तो दुर्बलता है अविद्या। यदि उसके अंदर ये विद्या आ जाए, ये ज्ञान आ जाए कि इन वस्तुओं को पवित्र करने वाला मैं हूं, तो क्या होगा? उसके बाद भगवान ने आगे जाके संकेत किया कि नाभिनंदन्ति नैष्कर्म्यम, नाभिनंदन्ति नैष्कर्म्यम और न कर्मसु अनुसज्जते। जब ऐसी विद्या उसके अंतर्गत आ जाती कि मेरा बल क्या है, तब कहने लगे वो जो है नैष्कर्म को लेकर के, कर्म को छोड़ करके भी प्रसन्न नहीं होता, माने कर्म की स्थिति को छोड़ करके भी प्रसन्न नहीं होता है। और कहने लगे कर्म में आसक्त भी नहीं होता, ये स्थिति उसकी होती। और ये जब स्थिति होती है तब उसके लिए संकेत कर दिया सुसमो, वही क्या है? सुसमो या परित्यागी। और ऐसा जो अपने में समन करता हुआ, इस अविद्यात्मक प्रवृत्ति का जो जिसने समन कर लिया है, और ऐसा समन करने वाला जो है वही वास्तव में क्या है? परित्यागी है। और वही क्या है? असंसक्तो, सो असंसक्तः इति स्मृतः, उसी को असंसक्त कहा गया, आसक्ति से रहित कहा गया। और इसके लिए जो निर्देश दिया गया कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, तुम असंग शस्त्र से, तो असंगता कब आएगी, असंसक्तता कब आएगी, ये सारे के सारे भेद बतलाए। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है कि पहले तो ये बतलाने जा रहे हैं कि वास्तव में तुम क्या, और यही जो है बात भगवान ने जब प्रारंभ उपदेश किया तो क्या कहा? वेदा विनाशिनम नित्यम यये नमजम अव्ययम, क्या कहा? तुम क्या हो? कहा आत्मा हो। और आत्मा कैसा है? तो कहा नित्य है। और वेद क्या कहता है? कहा ये जिसे तुम जीवात्मा कह के कह रहे, ये जीवात्मा भी कोई सामान्य चीज नहीं है, क्या है? कहा उसी महान आत्मा का अंश ही तो है, मवयु अंश हो करके जो संकेत करते। और जब अंश है तो अंश होने पर क्या है? जो स्थिति उसकी है वही कार्य इसका भी। जैसे एक महान जो है प्रज्वलित अग्नि जो कार्य करती है वही उसकी चिंगारी भी काम करती, उसके अंदर उष्णता धर्म है तो उस चिंगारी के अंदर भी क्या है? उष्णता धर्म विद्यमान। ठीक इसी प्रकार से जिसे हम महान आत्मा कहते हैं उसके अंदर जो धर्म विद्यमान है वही धर्म किसके अंदर विद्यमान? जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। अब विचार करो, यहां पर वेद के अंतर्गत कहा गया नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुं शीष्णो द्यौहु संवर्ततो पद्भ्याम भूमिर्दिशा करके संकेत किया गया। तो क्या मतलब? वहां उस विराट पुरुष के वर्णन को करते हुए कहा कि अंतरिक्ष जिसका नाभि है और देव जो है देवलोक स्वर्गलोक आदि जो है जिसका सिर है और पैर ही जिसके भूलोक है पृथ्वी लोक, तीनों लोकों की कल्पना कर दी। ठीक इसी प्रकार से जो शब्द कहा जाता यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जैसा वहां पिंड में वैसा ही ब्रह्मांड में, जैसा ब्रह्मांड में वैसा पिंड। तो यहां पर भी संकेत करते हैं तो देवानाम पू करके संकेत कर दिया वहां वेद में कि ये जो मस्तिष्क है वही क्या है? समस्त देवताओं का वास है, वही एक स्वर्ग की तरह से। अब जो है कब? तो पू शब्द का प्रयोग किया, जब मस्तिष्क के अंतर्गत पवित्रता रहती है माने विद्यात्मक स्थिति होती है तब वो स्वर्ग है, और जब उसी मस्तिष्क के अंतर्गत अविद्यात्मक स्थिति हो जाती है तब वही क्या हो जाता है? और नरक शब्द का अर्थ क्या है? नरक शब्द का अर्थ जी है वो क्या है? तो नर शब्द है, और नर शब्द से अल्पार्थक का प्रत्यय होता है। तो जो नर को अल्प बनाए, जो नर को परिच्छिन्न बनाए उसका नाम नरक है, और नर को परिच्छिन्न बनाने वाला कौन है? तो अज्ञान। अज्ञान अविद्या ही नरक है और विद्या ही स्वर्ग है। अब ये जब चीज हमारी समझ में आ जाती है कि वाहन वायु कहां है, तो जो विराट का वर्णन किया गया उस आकाश में, और उसी का अंश रूपी वायु कहां है, कहा जो जीवात्मा का हृदय है वहां तक जाती, उसकी नाभि में वही विद्यमान है और श्वास के द्वारा बाहर जाती। लेकिन अब करना क्या है, उस महान वायु के द्वारा हमारी जो इस परिच्छिन्नता में आने वाली वायु यदि सिद्ध हो जाती हो, फिर महान में जाती है तो फिर शुद्ध होकर के आती है और अपने को शुद्ध करती है, ये नियम है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उस महान वायु से जब हम अपनी वायु को मिला देते हैं तो उसमें बल आ जाता है, उसमें क्या आता है, वो बलवान हो जाती। और इसी प्रकार से केवल वायु ही नहीं, ये प्राणायाम की प्रक्रिया भी इसीलिए बतलाई गई। इसी प्रकार से जब हम अपने नेत्र के द्वारा देखते हैं, और उसका नेत्र क्या है, तो सूर्य ही उसका नेत्र, उसका नेत्र क्या है, सूर्य, और सूर्य के होने पर ही हमारा नेत्र देखने में समर्थ होता है, और सूर्य का जो प्रकाश नहीं होता है तो नेत्र देखने में अंधकार में समर्थ भी न्यूनता आ जाती। तो जब हम अपने इस न्यूनता को उसका जो स्रोत है उससे एकीकरण करने लगते हैं और ये समझ लेते हैं कि उसी का ये अवयव है, उसी का अंश है, उससे ये भिन्न नहीं है, तो क्या होता है, तो कहने लगे उसका जो है बल इसको प्राप्त हो जाता। तो अब इस प्रकार से यहां कहते हुए कहा कि ये जो है जीवात्मा है ये भी कैसा है, बल संपन्न है। लेकिन बल संपन्न कब रहता है और निर्बल कब हो जाता, तो अविद्या को लेकर के ही इसमें निर्बलता और विद्या को लेकर के ही इसमें बल। और जब इसके जीवन में यह विद्या आती है और जब वो जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि जो अवस्थाएं हैं, बाल्या युवा वृद्धा आदि अवस्थाओं का अनुभव करते हुए जब ये देखता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, तभी उसके जीवन में क्या आता है, असंसक्तता आती है। और उससे पहले असंसक्तता नहीं आती, और क्या यूं कह दें कि जीवन में विद्या आती, और विद्या आती है तो वो समझ लेता है, तब उसके अंतर्गत कर्म को छोड़ देने से, कर्म को न करने से वो प्रसन्न नहीं होता, और कर्म को करने से वो उसमें आसक्त भी नहीं होता। कब, जब विद्या आती। लेकिन हम यदि कहें कि कर्म को हम छोड़ देंगे और प्रसन्न हो तो इससे क्या है, हम निष्कर्मी हो जाएंगे, कहा यह संभव नहीं, असंसक्त हो जाओगे, कहा संभव नहीं। और कर्म को करने से आप जो है उसमें आसक्त हो जाओगे, कहा ऐसा भी नहीं। लेकिन इन दोनों के मध्य में हमें क्या देखना होगा, तो ये देखना होगा कि वास्तव में जब इसके अंदर वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला जो आत्मा, जिसे हम जीवात्मा करके कहते, उसके बगैर यह शरीर में कोई भी पवित्रता रह जाती नहीं, उसके होने पर ही ये पवित्र रहते हैं, उसके होने पर ही इसमें जो भी क्रिया हो रही है वो बल को प्राप्त होती है, और उसके न होने पर कोई भी क्रिया बल को प्राप्त नहीं होती, ये सिद्ध होता है। क्योंकि हमारी प्राण वायु भी महान वायु को लेकर के ही प्रबल होती, और आत्मा होता तभी वो करने में समर्थ होती। तो ये सारा का सारा बल किसको लेकर के है, तो आत्मा को लेकर के। अब जिस आत्मा को लेकर के है, उस आत्मा का हमें रूप पता चले कि वो आत्मा क्या है, तो आत्मा क्या है, तो इसके लिए गीता में, उपनिषदों में सर्वत्र क्या कहा कि आत्मा जो है नित्य है, आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो अब जब आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, तो उसका कभी नाश तो होना नहीं, उसका कभी अभाव तो होना नहीं। अभाव किसका होना है, तो कहने लगे आत्मा में जो आरोपित है। इसी को लेकर के जागृत अवस्था का भी अभाव देखा जाता है, स्वप्न अवस्था का भी अभाव देखा जाता है, सुषुप्ति का भी अभाव देखा जाता है, लेकिन इन अवस्थाओं को धारण जो करने वाला उसका, अवस्थाओं को जो धारण करने वाला है उसका अभाव देखा जाता नहीं। उन अवस्थाओं को लेकर के जो अहम को धारण करने वाला है, ध्यान दो, जो मैं हूं इस वृत्ति वाला है, इस अहम को धारण करने वाला है, इस अहम का भी तो अभाव देखा जाता। विचार क्या करना है, इस अहम का भी अभाव उस सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत देखा जाता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, जो वस्तु आने वाली है, जो जाने वाली है, वो कैसी है, वो विनाशी है, अनित्य। आगमा पायनो अनित्य हो, क्या है, जो आने वाली और जाने वाली है, आगमा पाई है, वो कैसी है, का अनित्य है। तो ये अहम कैसा हो गया, तर्क के अनुसार हम देखें, जब इस अहम का भी वहां पर जो है अभाव होता है, तो ये जो अहम है वो कैसा है, अनित्य हो गया। लेकिन अहम जिसमें आता है, जैसे कल कहा था, वस्त्र आपने धारण किया, तो आप तो हो लेकिन वस्त्र नहीं रहता हमेशा, आप धारण करते तब रहता है, फिर दूसरा धारण कर लेते, ये सब देखा जाता। ऐसे ही अहम को भी धारण किया गया, और अहम को धारण किया गया तो वो जिसने धारण किया वो तो क्या है, रहता है, लेकिन अहम कभी रहता और कभी जागृत आदि में तो रहता है, लेकिन सुसुप्ति में अहम नहीं रहता। तो ये जो अहम करके हम जो अपने को जानते हैं, ये जानना ही क्या है, अविद्या है, ये जानना ही क्या है, अविद्या। लेकिन अहम का आधार जो है, अहम का आश्रय जो है, जिसको लेकर के अहम प्रस्फुटित होता है, वो ही क्या है, कहा वो है आत्मा, वो है नित्य, और वो जो नित्य है ऐसे उसको जान लेने का नाम ही है क्या, विद्या। उसका नाम क्या हुआ, कहा विद्या। और ये जब विद्या आ जाती है तो किसको जाना, तो कहने लगे जो अहम को धारण करने वाला, अवस्थाओं को धारण करने वाला। और एक दिन कहा था, हम धारण करते किस लिए, कार्य विशेष के लिए, एक खेल विशेष के लिए, एक लीला विशेष के लिए, सारी चीजों को हम धारण करते हैं, लेकिन उन्हें धारण ही नहीं किए रहते और तदरूप हम नहीं होते, उनको हम उतार देते हैं, हम उससे सर्वथा पृथक होते। लीला के अंतर्गत जो भी वस्त्राभूषण व्यक्ति धारण करता, तो व्यक्ति वस्त्र आभूषण नहीं है, किंतु उन वस्त्र आभूषणों से सर्वथा पृथक। वो वस्त्र आभूषण सुशोभित कब होते, यदि उसके शरीर पर आते हैं वो धारण करता तब तो शोभा को देते, लेकिन केवल वस्त्राभूषण रखे रहे तो सुशोभित होंगे, तब उनकी शोभा नहीं होती। उनकी शोभा भी कब होती है, जब उनको धारण किया जाए, लेकिन उनके अंतर्गत है अनित्यता, और वो धारण करने वाला वो नहीं है, ये सिद्ध होता। ठीक इसी प्रकार से इन वस्तुओं आदि को धारण करके इन्हें पवित्र करने वाला जो है वो है क्या, आत्मा। और वही है क्या, तुम शब्द से कहा जाने वाला, तू वही अहम शब्द से कहा जाने, संकेत उसकी तरफ। लेकिन अहम करके हम जिसको, जो आभूषण मात्र को लेकर के हम ले रहे हैं, या जो है हम शरीर मात्र को लेकर के ले रहे हैं, वो अहम कैसा है, वो अनित्य है। तब अहम सत्य कौन है, तो जो आत्मा में ही यदि अहम का प्रबोध हो जाए, जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहते, मैं ब्रह्म ही हूं है, जैसे लीला करने वाला कह दे। वो संत लोग एक उदाहरण देते हैं कि एक बुद्धू नाम था व्यक्ति, और उसे रामलीला में कर दिया गया, और रामलीला में कर दिया गया, उसे एक पात्रता दे दी गई, वो पात्र बन गया। उधर जो है जब युद्ध हुआ तो रावण ने हुंकार भरी, और हुंकार भरी, और जैसे ही रावण उस पर टूटा तो वो कहने लगा, नहीं मैं तो बुद्धू हूं है। क्या मतलब, क्योंकि वैसे तो अब जो है, जैसे उसका अभिनिवेश किसमें है, ऐसे ही हमारा अभिनिवेश किसमें है, और कहां पर हमारी स्थिति है, ये बस विद्या अविद्या का रूप है। और ये चीज हमारी समझ में जब आ जाती है, तो प्रकृति भी हमको जो है इसका संदेश देती है, लेकिन उस प्रकृति से भी हम समझ पाते नहीं। और जब प्रकृति का हम विचार करने लगते हैं तो बात समझ में आ जाती है, और जब बात समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता, तो ये होता है तो सारा जगत हमारे लिए खेल रूप हो जाता है। और खेल रूप हो जाता है तो खेल रूप होने पर खेल में जो भी हमने धारण किया था या जो भी हमने रूप लिया था, उस रूप में हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। हम क्या जानते हैं, वहां हमें बोध होता मैं तो अमुक व्यक्ति हूं, ये तो रूप मैंने धारण किया। लेकिन दुखद स्थिति वही हो जाती है जहां उस रूप में आसक्ति हो जाए। उस रूप में आसक्ति का होना ही हमारे लिए दुखद है, और उस आसक्ति में कारण क्या है, अविद्या अज्ञान।